بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 29 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دریائے سندھ سے دریائے آمو تک یادداشتیں تاریخ کی سلگتی راہوں میں مشاہدات و تجربات کا ایک رومانوی سفر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں زید حامد. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 29 سنتے ہیں. صفحہ نمبر 309. اگلے 4 گھنٹے تک میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھا برف کے ڈھیلے کی طرح جم چکا تھا, جبکہ ہزاروں انسان اور جانور ان کچی پگڈنڈیوں پر دونوں جانب سے پہاڑ پر چڑھتے اور اترتے رہے. روشنی کی پہلے کرن کے ساتھ ہی ہم چوٹی پر جا پہنچے اور پھر شاہانہ انداز میں تحد نگاہ استادہ برف پوش پہاڑوں کی دل موہ لینے والی خوبصورتی کے درمیان میں نپو پھٹنے کا منظر دیکھا. میں نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی, لیکن اب مجھے اپنے گھٹنوں میں ایک شدید درد کا احساس ہوا, کیونکہ اس سردی میں اتنی دیر ساکت رہنے کی وجہ سے وہ منجمد ہو چکے تھے. میں پہلے ہی آبلا پا تھا اور اب اپنے گھٹنوں کے باعث کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا. ہم زیادہ دیر اس چوٹی پر نہیں رکے اور ہمیں جلد ہی پہاڑ کی دوسری جانب روانہ ہونا پڑا. میں چڑھائی کے لیے تو گھوڑے پر سوار ہو سکتا تھا, لیکن پتھریلی ڈھلانوں سے ہوتے ہوئے نیچے وادی میں اترتے وقت گھوڑے پر بیٹھے رہنا سوار اور گھوڑے دونوں کے لیے ہی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا. لیکن پتھریلی ڈھلانوں سے ہوتے ہوئے نیچے وادی میں اترتے وقت گھوڑے پر بیٹھے رہنا, اب مجھے نیچے کی جانب ہی پیدل ہی چلنا تھا, لیکن پاؤں اور گھٹنے میں شدید تکلیف کے باعث میں تقریباً معذور ہی ہو چکا تھا. ہر قدم پر خود کو گھسیٹتے ہوئے درد کے باعث امڑ آنے والے آنسو میری نظر کو بھی دھندلا رہے تھے. میں نے اس سے قبل زندگی میں کبھی خود کو اتنا بے یار و مددگار محسوس نہیں کیا تھا. کسی نہ کسی طرح میں نیچے وادی میں موجود ایک کمرے میں مشتمل پرانے عارضی جھوپڑے نما مہمان خانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا کہ جہاں گرم چائے اور خشک روٹی سے ہماری توازو کی گئی. سورج کے بلند ہونے اور خود اپنے جسم میں حدت محسوس کرتے ہوئے میں نے سفر جاری رکھنے کے لیے خود کو قدرے بہتر محسوس کیا. ابھی بھی کم از کم ایک دن کی مزید پیدل مسافت باقی تھی کہ جس کے بعد ہم پیو پہنچ پاتے. یہ جو پہلا قاعدہ گاؤں اور وادی فخار میں مسعود کے مجاہدین کی اولین چوکی تھی. صفحہ نمبر 310 اور 311 پر ایک نقشے کی تصویر ہے, جس میں سب سے اوپر نقشے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان سے تالاقان تک ہندو کش کے پہاڑوں سے ہوتا ہوا راستہ, جس پر مصنف اور ایم ایم عالم صاحب نے سفر کیا, اور یہ پورا راستے کی نشاندہی کی گئی ہے. اور اس میں ایک چھوٹی سی تصویر میں زید حامد فٹ بال کھیلتے ہوئے کسی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. دوسری تصویر میں عالم صاحب ایک زید حامد کے ساتھ ایک گدھے پر سوار ایک سڑک پر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی تصویر میں ایک رتیلے پہاڑ کی تصویر ہے اور زید حامد عالم صاحب کے ساتھ سفر پر گامزن ہے. ایک چھوٹی سی تصویر میں ہندو کش کے پہاڑی سلسلے کی تصویر ہے اور ایک تصویر میں زید حامد گھوڑے پر سوار شدید سردی میں آگے کی طرف رواں دواں ہے, اور دو تصویروں میں وادی فرخار کی تصویر موجود ہے. اور راستوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ پاکستان افغانستان بدخشاں تخار میں شمال کی طرف نشاندہی کی گئی ہے, اور پاکستان کو ایک جانب نیچے کی جانب دکھایا گیا ہے اور شمال کے اوپر کی طرف افغانستان کی نشاندہی ہے. اس کے بائیں ہاتھ کی طرف بدخشاں کا راستہ اور پھر تخار یعنی پیو کا گاؤں دکھایا گیا ہے, اور پھر وادی فخار سے آگے تالاقان लास्ट में दिखाया गया है। सफा नंबर 312, 312 पर एक बहुत ही खूबसूरत वादी की तस्वीर है, जहां चारों तरफ पहाड़ी सिलसिले हैं और बीच में हरी भरी बहुत ही खूबसूरत वादी की तस्वीर है। सफा नंबर 313, यहां से एक कच्ची सड़क वादी में अंदर तक जाती थी और हम तालाकान के कस्बे तक जाने के लिए कोई ट्रक या जीप भी हासिल कर सकते थे। छठे दिन शाम के धुंधलके में अंधेरा फैलने से जरा कबल हम प्यो गांव में दाखिल हो गए। हमें मुकामी मुजाहिदीन ने खुश आमदीद कहा और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि मैं एक पाकिस्तानी मेहमान हूं, तो मुझे एक अलग मेहमान खाने में ले जाया गया जो अफगान कालीनों और चादरों से आरास्ता था और दीवारों के साथ तकिये भी लगे हुए थे। ये गुज़श्ता 6 दिनों के दौरान पहली महजिब जगह थी कि जो मुझे कयाम के लिए नसीब हुई। मैं ये देखकर हैरान हुआ कि कई शरारती से बच्चे मुझे इस मेहमान खाने में खुश आमदीद कह रहे थे। ओह, तो ये एक घर है, मेहमान खाना नहीं। माहौल की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी से महफूज होते हुए मैंने सोचा। मैंने जब चंद मुजाहिदीन को वापस पाकिस्तान की जानिब जाते हुए देखा तो मौके से फायदा उठाते हुए अपने घर वालों को अपनी आफियत और मरकज तक बखैरियत आमद की इतला देने के लिए एक खत भी लिख डाला। मैंने खत को इस टिकट लगे लिफाफे में डाला कि जो मैं अपने साथ पाकिस्तान से किसी ऐसे ही मौके के लिए लाया था और उसे एक मोतबर नजर आने वाले मुजाहिद के हवाले कर दिया ताकि वो उसे चतराल पहुंचते ही किसी डाकखाने में डाल दे। उसने ईमानदारी से ये फरीजा सर अंजाम दिया। और ठीक 12 दिन बाद ये खत मेरे वालिद तक पहुंच भी गया कि जो इन दोनों दिनों खानदान समेत एबटाबाद में मुकीम थे। इस पूरी मुहिम के दौरान अपने घर वालों से होने वाला ये मेरा वाहिद राब्ता था। जल्द ही एक खुशगवार शख्सियत वाले बुजुर्ग इस घर में आए, मुझे गर्मजोशी से खुशामदीद कहा और मेरे नहाने धोने, रात के खाने और सोने का इंतजाम करने लगे। ये कई दिनों बाद पहला मौका था कि मुझे गर्म पानी से गुस्ल करने का मौका मिला और अब मैं नए कपड़े पहनकर इस घर के 8 दर्जन के करीब मर्दों और बच्चों के साथ रात का खाना खाने बैठा हुआ था। खाना सादा सा था कि जिसमें घी वाले चावल, उबला हुआ गोश्त, रोटी और नमकीन शोरबा शामिल था। सख्त भूखा होने के बायस मैं खाने पर इस तरह टूट कर गिरा कि जैसे किसी कहर ज्यादा इलाके से आया हुआ फाका शदा बाशिंदा हो। मैं थकन से चूर था और अब गर्म बिस्तर में घुसकर सोने के लिए बेताब भी, लेकिन अभी तक अपने मेजबान का नाम भी नहीं जानता था और न ही अपने गेट मौजूद अफराद से आशना हुआ था। खाना खाने के काफी देर बाद जब मैं अपने जख्मों पर मरहम लगाते हुए सब चाय की एक प्याली से लुत्फ अंदोज हो रहा था तो ये खुशगवार हकीकत मुझ पर आश्कार हुई कि मैं तो शेर की कछार में ही मौजूद हूँ। ये पन शेर के शेर अहमद शाह मसूद का घर था। सफा नंबर 214 पर एक तस्वीर है जैद हामिद की और वो हेडफोन पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सफा नंबर 215, बाब नंबर 16, शेरों की कछार में। काका ताजुद्दीन लगभग 60 बरस की उम्र के एक सादा मिजाज शख्स था। अगर वो खुद अपना तारुफ न करवाते तो मुझे कभी मालूम न होता कि वो अफगानिस्तान के सबसे ज्यादा ताकतवर और मजबूत मुजाहिद कमांडर के ससुर हैं। वो पनशेर से ताल्लुक रखने वाले एक ताजिक थे और जिहाद के इब्तदाई दिनों में ही मसूद के साथ थे और अक्सर औकात तो उसके जाती मुहाफिज की जिम्मेदारियां भी अंजाम देते रहे। मसूद की शादी उनकी बेटी के साथ हुई थी और अब पियो में काका ताजुद्दीन मेरे मेजबान थे और मेरे इर्द गिर्द मौजूद सभी नौजवान मर्द और लड़के उनके बेटे और रिश्ते में मसूद के साले थे। इनमें सबसे बड़ा शाहिदुद्दीन था जिसकी उम्र लगभग 16 बरस थी जबकि सबसे कम उम्र लड़का तकरीबन 8 बरस का था। उनका सबसे बड़ा बेटा राशिदुद्दीन था लेकिन उससे मेरी मुलाकात अगले बरस तखार के अपने दूसरे सफर के दौरान ही हुई। करजई के दौर में राशिद ने दुबई में अफगान सिफारतकार के तौर पर भी काम किया और आखिरी इत्तलात के मुताबिक अब वो अपने खानदान के साथ काबुल में रिहाइश पजीर है। इस जमाने में काका ताजुद्दीन और उनके बेटों को मसूद के साथ उनकी रिश्तेदारी के बायस पानशेरी मुजाहिदीन में नहायत काबिल एहतराम और बा अख्तियार समझा जाता था और उनका ये रुतबा आज भी बरकरार है। मसूद की अपनी कई बेटियां और अहमद नामी एक ही बेटा था जो इस वक्त सिर्फ एक ही बरस का था कि जब मैं सन 1990 में उनसे मिला। आज सन 2011 में वो बच्चा अहमद एक होनहार नौजवान बन चुका है और ईरान में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद बरतानिया की सेनेट हर्सिट अस्करी तरबियत गाह में शमूलियत का इरादा रखता है। उसका बाप एक जानबाज इंसान था कि जिसने अपने मुल्क और मिल्लत की आजादी की हिफाजत बड़ी बेजिगरी से की। सफा नंबर 316। आज जब नेटो और बरतानवी अफवाज अफगानिस्तान पर एक मरतबा फिर कब्जा किए हुए हैं तो ये देखना होगा कि पनशेर के शेर का ये बच्चा बरतानवी अस्करी तरबियत गाह से निकलकर किस रद्द अमल का इजहार करता है। मैं सिर्फ यही उम्मीद करता हूं कि वो अपने अजीम बाप की जगह लेने का अहल बन जाए और अपने कौम ईमान और धरती की हिफाजत की शानदार मीरास और रिवायात को लेकर आगे बढ़ने के काबिल हो सके। पनशेर के मुजाहिदीन के लिए अहमद इनके महबूब और तारीख साज रहनुमा का कानूनी अखलाकी और फितरी वारिस है और उसे इन लोगों की जानिब से हमेशा इज्जत मिलती रहेगी कि जिन्होंने एक जमाने में उसके वालिद की जेर क्यादत अपनी जंग आजादी लड़ी थी। एक छोटी सी तस्वीर में अहमद की तस्वीर है जो कि मसूद का बेटा है और ये तस्वीर सन 1990 की है और अहमद हाथ में एक छोटी सी किताब लिए हुए खड़ा हुआ है। उस जमाने में जब मेरी उस खानदान से मुलाकात हुई तो वो एक गैर यकीनी मुस्तकबिल का शिकार और मैदान जंग की एक पुरमसाइल जिंदगी का सामना कर रहा था कि जहां 10 बरस से जारी जंग में अब तक 10 लाख से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके थे। फरहाद वादी की बैरूनी सरहद पर वाकया प्यू का गांव जहां काका ताजुद्दीन और उनका पूरा खानदान मुकीम था कुछ ही अरसा कबल मसूद के जेर तसल्लुत आया था। चूंकि मसूद अब वादी पनशेर से बिल्कुल निकल आया था और उसने फरखार की वादी को अपना नया मरकज बना लिया था लिहाजा उसके बीवी बच्चे भी उसके साथ ही यहां मुंतकिल हो गए थे और अब कच्ची मट्टी के घरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बस्ती में कयाम पजीर थे कि जहां अब मैं भी उनके मेहमान की हैसियत से ठहरा हुआ था। यहां वादी इंतहाई तंग थी वाकईतन सिर्फ चंद सौ गज तक ही चौड़ी जिसके दरमियान से एक तेज और चिंगारता हुआ दरिया बहता और उसके साथ चलती चलती एक कच्ची सड़क वादी के अंदर गहराई में सुबह तखार के दारुल हुकूमत तलाकान शहर की तरफ जाती थी। घरों के गिर्द विलायती मकूफ यानी चेरी के झुंड वाके थे और दरिया में ट्राउट मछली की बहुतात थी कि जिसे ये नौजवान लड़के बड़े शौक से शिकार करते। एक छोटी सी तस्वीर है जिसके नीचे लिखा है कि सन 1991 भाइयों का दस्ता काका ताजुद्दीन के सारे बेटों की तस्वीर इसमें राइफल हाथ में लिए हुए मौजूद हैं। सफा नंबर 317 पर दो तस्वीरें हैं जिसमें मुसन्निफ जैद हामिद जो है सन 1991 में मुख्तलिफ हथियारों के साथ अहमद शाह मसूद के घर पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ हथियारों के साथ उनकी तस्वीर दोनों हैं। पहाड़ियों की चोटियों पर सन 12.7 मिलीमीटर की तैयारा शिकन तोपें नसब थी कि जिनका मकसद किसी भी फजाई हमले की सूरत में दिफाई कार्रवाई करना था। ये लड़के अक्सर मुझे खींचकर अपने साथ पहाड़ की चोटी तक ले जाते जहां वो तमाम मुख्तलिफ हथियारों को थाम कर अपनी यादगारी तस्वीर बनवाते। ये लड़के अक्सर मुझे खींचकर अपने साथ पहाड़ की चोटी तक ले जाते जहां वो तमाम के तमाम हथियारों को थाम कर अपनी यादगार तस्वीरें बनवाते। वो मुझसे सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि मेरे कैमरे, मेरे अद्वियात, हत्ता कि मेरी उन कहानियों से भी सहर ज्यादा थे जो मैं पाकिस्तान में गुजरने वाली अपनी जिंदगी के हवाले से उन्हें सुनाता। उनमें से किसी ने भी अपने घर और माहौल के अलावा बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, लिहाजा मेरी कहानियां उन्हें किसी जादुई और देवमालाई दास्तान से कम नहीं लगती थी। माहौल में चारों अतराफ फैले हुए दिलकश तरीन मनाजिर के दरमियान यहाँ जिंदगी हैरत अंगेज तौर पर बेहद पुरअमन और पुरसकून थी और इस खूनरेज जंग की एक हल्की सी झलक भी यहाँ दिखाई नहीं देती थी जो कहीं करीब ही जारी थी। सन 1991 में तखार के अपने दूसरे सफर के दौरान मैं एक मरतबा फिर उनके घर ठहरा। सफा नंबर 318। और आज तक इस खानदान के साथ गुजारे हुए इन पुरसकून लम्हात की यादें मेरे दिल पर नक्श हैं। मैंने अगले चंद रोज मसूद के घर पर ही कयाम किया और उस दौरान कमर तोड़ सफर की थकान दूर करने के साथ साथ मैं अपने जख्मों की मरहम पट्टी भी करता रहा। नौजवान लड़के खास तौर पर शाहिदुद्दीन फौरन ही मेरे दोस्त बन गए थे। अपनी कम उम्र के बावजूद शाहिदुद्दीन गैर मुतवक्के तौर पर एक पुख्ता जहन का हामिल नौजवान था। जंग की सख्तियों ने इन नौजवानों को वक्त से पहले ही संजीदा और बालिग नजर बना दिया था। काका ताजुद्दीन ने मुझे बताया कि आमर साहब यानी मसूद को एहतरामन इस खिताब से पुकारा जाता था और फारसी में आमर का मतलब है फौजी कमांडर। अक्सर अपने बीवी बच्चियों से मिलने आते हैं और उनकी आमद किसी भी दिन मुतवक्के है, लेकिन किसी को भी उनके आने का सही वक्त मालूम ना था क्योंकि उनके सफरी मसूबे हमेशा ही सिरगराज में रखे जाते कि जिनके मुतालिक सिवाय मसूद के इंतहाई करीबी हिफाजती दस्ते के कोई भी नहीं जानता था। लेकिन एक चीज यकीनी थी कि वो इसी फरखार वादी में ही कहीं मौजूद था। सड़क पर चंद घंटों की मुसाफिर के बाद उसका अमली मरकज कायम था कि जो उसके कमांडर और कंट्रोल सेंटर का काम भी देता, और इससे कबल आगे तकरीबन दो घंटे के मजीद सफर के बाद सूबे तखार का वो सदर मकाम तालाकान का शहर वाके था। मसूद ने हाल ही में इस शहर पर कब्जा किया था और ये सोवियत इनखला के बाद आजाद कराया जाने वाला सबसे बड़ा शहर था। अब मेरे पास जो रास्ते थे उनमें से एक ये था कि मैं वहीं उसके घर में रुककर उसका इंतजार करूं, दूसरा ये कि आगे बढ़कर उसके अमली मरकज पर कयाम करूं, या फिर उससे भी आगे तालाकान के शहर पहुंचकर उसको तलाश करने के लिए अपनी किस्मत आजमाई करूं। मैं काका ताजुद्दीन के घर निहायत आराम से था और उनके अक्सर बेटे तो मेरे गहरे दोस्त भी बन चुके थे कि जिनके लिए एक पाकिस्तानी मेहमान का उनके साथ ठहरना ही एक मशहूर कुन एजाज था। ये पहला मौका था कि कोई पाकिस्तानी मेहमान मसूद के घर ठहरा हो और अब पूरा खानदान ही मेरे इस कयाम को हर मुमकिन हद तक आरामदेह और यादगार बनाने के लिए अपनी बसात से बढ़कर कोशिशें कर रहा था। इसमें कोई शुबा नहीं कि उनकी ये काविश मुतासिर कुन भी थी और नाकाबले फरामोश भी, लेकिन अब मैं बेसब्रा हो चला था। क्या आजकल आमर साहब के साथ कोई गैर मुल्की भी मौजूद है? मैंने काका ताजुद्दीन से दरियाफ्त किया। हाँ, उन्होंने जवाब दिया, मरकज पर कुछ पाकिस्तानी मौजूद हैं। मेरा तजस्सुस फौरन ही बेदार हो गया, एक पाकिस्तानी जनरल भी उनके साथ ही है। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा। अब मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई और खुशी के मारे सब्र का दामन हाथ से छूटने लगा। क्या वो आलम साहब हो सकते हैं? मैंने सोचा, और इस बात का इल्म होते ही मैंने फौरन अगले मरकज तक जाने का फैसला कर लिया कि जहां ये पाकिस्तानी मुकीम थे। अब मसूद के घर रुककर उसका इंतजार करने के बजाय मैंने उसके पीछे जाने का फैसला कर लिया। मैंने काका ताजुद्दीन से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने कदरे हिचकिचाते हुए मुझे इजाजत दे दी। उनके दिल में मेरे लिए खास उनसियत पैदा हो गई थी, लेकिन साथ ही वो मेरी मसूद से मुलाकात की शदीद ख्वाहिश का भी एहतराम कर रहे थे। ठीक है, मैं तुम्हें कल किसी भी दस्तयाब सवारी के जरिए भिजवा दूंगा। सफा नंबर 319। सफा नंबर 319 पर ऊपर छोटी सी एक तस्वीर है जिसमें नीचे लिखा हुआ है कि वादी फखार का वो मरकज कि जहां आलम साहब ठहरे हुए थे। उन्होंने मेरी ख्वाहिश के आगे बिला आखिर घुटने टेक दिए। अगले दिन टूटी फूटी सड़क के रास्ते वादी फरखान में वाकई मसूद के मरकज तक मेरी कमर तोड़ सफर के लिए एक खस्ता हाल रूसी साख्ता जीप हासिल कर ली गई। जल्द ही मैंने अपने आप को एक वसी अरीज अहाते में पाया जो यकीनन एक सबक सोवियत या इस तरह की फौजी मरकज था कि जहां तबाहशुदा तोपखाना और बख्तर बनगाड़ियां जा बजा बिखरी हुई थी। इस अहाते के गिर्द एक चार दीवारी और अंदर पत्थर से बनी बहुत सी इमारतें मौजूद थीं। मैं अपनी मंजिल तक तो पहुंच चुका था मगर अब मुझे पाकिस्तानियों को तलाश करना था। मैंने अपना कमरबस्ता उठाया और चलता हुआ अहाते में मजीद अंदर को दाखिल हो गया कि जहां मुजाहिदीन ने मेरी आमद का एहसास होते ही मुझे खुशामदीद कहते हुए गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। यहां के माहौल में एक धीमापन सा था और मैं इत्मीनान से बिला तकल्लुफ मुजाहिदीन के दरमियान से गुजरता रहा। पाकिस्तानी कहाँ हैं, मैंने दरियाफ्त किया और फिर मेरी रहनुमाई अहाते के कोने में वाके पत्थरों से तामीर शुदा दो पुरानी सी इमारतों की जानिब कर दी गई। इस तरफ तेजी से बढ़ते हुए मेरा सामना कमरों के बाहर खड़े चंद एक गैर अफगान चेहरों से हुआ जो मुझे अपनी तरफ आता देखकर हैरान से हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैंने जोश से उन्हें सलाम किया और उनकी जानिब से ही उतना ही पुरजोश जवाब आया। गालिबन वो मुझे कोई अरब समझ रहे थे मगर फिर मैंने खारिज उर्दू में दरियाफ्त किया, क्या आलम साहब यहाँ हैं? हाँ, वो अंदर कमरे में हैं, उनमें से एक ने जवाब दिया। मेरा जोश अब अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। मैं सरद से कमरे में दाखिल हुआ कि जहाँ बहुत तारीकी थी और रोशनी में होने वाली इस अचानक तब्दीली से मेरी बसारत को बहाल होने में कुछ वक्त लगा। एक कोने में पड़ी लकड़ी की टूटी फूटी चारपाई पर एक बूढ़ा सा शख्स लेटा हुआ था जिसने मेरी आमद पर उठने की कोशिश की। उनका सर एक रुमाल से ढांपा हुआ था लेकिन मैं इस चेहरे को पहचानने में गलती हरगिज नहीं कर सकता था। मैं बिल आखिर आलम साहब तक पहुंच ही गया था। मैंने अपने जज्बात पर काबू रखने की कोशिश करते हुए एहतरामन उन्हें सिर्फ अस्सलाम वालेकुम सर कहकर ही मुखातिब किया। उन्होंने फौरन ही मुझे पहचान दिया और अपने खास बावकार फौजी अंदाज में एक मजबूत मुस्कुराहट के साथ मुझसे मुखातिब हुए। हेलो जैद, वालेकुम अस्सलाम। सफा नंबर 320। बिलाआखिर तुम आ ही गए। उन्होंने मेरे आगे बढ़े हुए हाथ से गर्मजोशी से मुसाहिफा किया। ना ही हम गले मिले और ना ही कोई जज्बाती तलातुम बरपा हुआ। मैं उनका बेहद एहतराम करता था और उनकी संजीदा तबीयत से भी वाकिफ था। वो इतने ही बावकार थे कि मेरी सतह तक नीचे नहीं उतर सकते थे। मेरी आमद की खबर जल्द ही पूरे मरकज में फैल गई और वो तमाम पाकिस्तानी मुझे खुश आमदीद कहने के लिए जमा हो गए। मैंने उनमें से किसी भी मुजाहिद को पहले नहीं देखा था लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आलम साहब के साथ इस वक्त 7 या 8 नौजवान थे जिनमें से सिर्फ 2 ही असली पाकिस्तानी थे, बाकी बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले बंगाली थे लेकिन चूंकि वो सब भी आलम साहब के साथ ही रहते थे और उर्दू में बात करते थे लिहाजा उन्हें भी सब पाकिस्तानी ही समझते थे। बंगाली मुजाहिदीन आलम साहब से और भी ज्यादा उन्फियत रखते थे क्योंकि आलम साहब बहुत रवानी से बंगला जबान भी बोल सकते थे। वहां मौजूद तमाम लड़के ही गरीब खानदानों से ताल्लुक रखते थे और मेरी तरह वो भी अपने जमीर की आवाज पर जिहाद के लिए फर्दन फर्दन यहाँ पहुंचे थे। सिर्फ एक कारी सलीम ही था जो बाकायदा पाकिस्तानी जिहादी तंजीम हरकतुल जिहादुल इस्लामी से ताल्लुक रखता था और यहाँ इतने अरसे से मुकीम था कि सभी उससे वाकिफ थे और वो यहाँ के मुकामी ताजिक मुजाहिदीन में घुल मिल गया था। मेरे लिए अपनी इस मुहिम का अहम मकसद तो गैर मुतवक्के तौर पर जल्द ही हासिल हो चुका था। मैंने आलम साहब को ढूंढ निकाला था। अपने तौर पर वो भी मुझे देखकर बेहद मसरूर थे और इस बात से बहुत मुतासिर कि मैं यहाँ उनकी तलाश में इतनी दूर तक चला आया हूँ। हम घंटों बैठे बातें करते एक दूसरे को अपनी दास्तानें सुनाते रहे। वो पाकिस्तान में आने वाली तब्दीलियों के मुतालिक जानना चाहते थे, जबकि मैं मुतजस्सिस था कि उनका गुज़श्ता एक बरस कैसे गुजरा और इलाके में जिहाद और मुजाहिदीन की क्या सूरत हाल है। आलम साहब जिस्मानी तौर पर बेहद कमजोर हो चुके थे और मैं ये देख रहा था कि वो यहाँ नहायत नामसाइल हालात में एक इंतहाई सख्त जिंदगी बसर कर रहे हैं। मरकज में कोई बैतुल खला नहीं था और मुजाहिदीन को रफ़े हाजत के लिए पहाड़ों पर ही जाना पड़ता, यहाँ तक कि गुसल और वजू करने के लिए भी गर्म पानी दस्तियाब नहीं था। पत्थर से बने कमरों को गर्म रखने का कोई इंतजाम मौजूद नहीं था और यहाँ के मयार जिंदगी का मुकाबला अफगान खाना बदोशों के तर्ज हयात से ही किया जा सकता था। अगर मैं आलम साहब को पहले ना जानता होता तो मेरे लिए ये यकीन करना इंतहाई मुश्किल होता कि वो इतने तवील अरसे से इस कदर नामसाइद और नाकाबले बर्दाश्त हालात जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इस लागर शख्स का संगलाख तरीन पहाड़ी सिलसिलों को पैदल अबूर करना और फिर इंतहाई दिगरगू हालत में शदीद मौसम सरमा में भी इस इलाके में बसर करना मेरे लिए उससे भी ज्यादा नाकाबले फहम अमर था। लेकिन वो मेरे सामने मौजूद थे, मुतमईन, पुरसकून और लबों पर एक भी हर्फ शिकायत लाए बगैर हमेशा की तरह बावकार। पाकिस्तान में उनके रुतबे का कोई भी शख्स एक आरामदेह बंगले में पुरासाई जिंदगी गुजार रहा होता, लेकिन उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी एक जज्बाती और पुरजोश मुजाहिद की हैसियत से ही गुजारी थी। सफा नंबर 321। और अब अपनी ज़ईफ़ुल उम्री और जिसामत और कमजोर जिसामत के बावजूद इस रास्ते का इंतखाब भी उन्होंने खुद ही किया था। आलम साहब के वजूद में छुपी हुई मजबूत कुव्वत इरादी, अपने नफ्स को काबू में रखने की बे इंतहा सलाहियत मुझे हमेशा ही हैरत ज़दा करती थी। और यहाँ फरखार वादी में भी एक मरतबा फिर उन्होंने मुझे शिश्तर करके रख दिया था। शायद यही वजह थी कि अल्लाह सुबहाना ताला ने पाक फजाइया में बहसियत एक लड़ाका हवाबाज के उन्हें वो इज्जत दी जो उनके अलावा और किसी और को नसीब में नहीं आई। यहाँ मुझे भी मालूम हुआ कि मसूद चाहे कहीं भी हो, वो इस मरकज पर बाकायदगी से वापस आता रहता है। मुझे यहाँ आलम साहब भी मिल गए थे और अपने साथ जहनी हम आंगनी रखने वाले नौजवान भी, लिहाजा मैंने निहायत इत्मीनान से यही डेरा डाल लिया और अब मुझे कहीं जाने की कोई जल्दी ना थी, जब तक मुझे अपनी मुहिम का दूसरा मकसद भी हासिल ना हो जाता, यानी मसूद से मुलाकात। आलम साहब ने पिछला पूरा साल इसी मरकज पर गुजारा था और वो ज्यादा बाहर भी नहीं निकले थे। जाहिर है उनकी यहाँ आमद का मकसद अमली तौर पर मुजाहिदीन के हिमरा झड़पों में हिस्सा लेना नहीं था, बल्कि उन्हें एक ऐसे मकसद के लिए अपनी अखलाकी, जज्बाती और रूहानी ताइद देना थी कि जो उनके नजदीक एक मुकद्दस फर्ज था। एक छोटी सी तस्वीर में आलम साहब की तस्वीर है और नीचे लिखा है कि सन 1990 एयर कमोडोर MM आलम वादी फरखार में। अफगान मुजाहिदीन में तो वो एक पाकिस्तानी जर्नल की हैसियत से मारूफ थे, लेकिन हकीकत ये थी कि हर अफगान, यहाँ तक के मसूद भी, उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह समझने से कासिर था। आलम साहब एक आम दुनियावी जर्नल से इस कदर मुख्तलिफ इंसान थे कि कई अफगान तो इस बात के हवाले से मशकूक भी थे कि क्या वो वाकई पाक फजाइया में एक आला ओहदे पर भी फाइज रहे हैं या नहीं। दुनिया के बेहतरीन जंगजू हवाबाज की हैसियत से उनकी वफादारी के किस्से तो सब ने सुन रखे थे, लेकिन यहाँ उन पर शक करने वालों की तादाद भी कुछ कम ना थी। मगर आलम साहब हर तारीफ और तनकीद से बेनियाज हो चुके थे और उन्होंने अपने खानदान या बैरूनी दुनिया से हर रابطہ तोड़कर इस वीराने में एक गुमनाम सी जिंदगी का इंतखाब कर लिया था। सफा नंबर 322 पर बैरूनी जराए से ली गई एक छोटी सी तस्वीर है जिसमें जैद हामिद फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पास एक छोटा सा दस्ती रेडियो जरूर था कि जिसके जरिए ही वो बैरूनी दुनिया की खबरें सुनकर एक खफीफ सा राबता कायम रखते थे। हर शाम वो बड़े एहतमाम से मिट्टी के तेल की लालटेन उठाते और उसका शीशा खुद अपने हाथों से साफ करके आने वाली रात के लिए उसे तैयार करते। फिर रात के खाने के बाद हम सब उनके करीब ही मदन सी पीली रोशनी के गिर्द दायरा बनाकर बैठ जाते और उनकी हैरान कुन दास्तानें, तजर्बात और दानिश भरी बातें सुनते रहते। किताब का पार्ट नंबर 29 यहाँ पर मुकम्मल होता है। किताब का बकिया हिस्सा किताब के पार्ट नंबर 30 में सुनें।